ग्रंथ संता विलास में एक चैप्टर है वासना छेदन निधि, उसका वचन नंबर 58 चला जा रहा है। इसको ध्यान से शुरू करें, फिर इस पर विचार करें। वह परम तत्व आत्मा शरीर के अंदर और बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश कर रहा है। वह परम तत्व आत्मा शरीर के अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश कर रहा है। निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति के देने वाला है। सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है। तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते हैं, जिससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु प्रायणता हासिल करे और तमाम मानसिक दोषों से निवृत्त होकर प्रभु स्वरूप में लीन हो जावे, जो अखंड आनंद स्वरूप। एक बात सुनिए, वह परम तत्व आत्मा शरीर के अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश कर रहा है। निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति के देने वाला है। सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही। तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते है, जिससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु प्रायणता हासिल करे और तमाम मानसिक दोषों से निवृत्त होकर प्रभु स्वरूप में लीन हो जावे, जो अखंड आनंद स्वरूप। ये वचन प्रभु उपासना की बात करता है, जिस कार्य के लिए मानव चोला हमको दिया गया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं, वो परम तत्व आत्मा, वो ईश्वर, वो परमेश्वर शरीर के अंदर और बाहर पूर्ण स्वरूप करके प्रकाश करता है। अर्थात इस शरीर का संचालन, इस शरीर का जीवन चलाने वाला वो परमेश्वर है, और शरीर के बाहर जो संसार है, जो पृथ्वी है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, उसका संचालन करने वाला भी ईश्वर ही है। अर्थात ईश्वर की सत्ता छोड़कर दूसरी सत्ता इस सृष्टि में है ही नहीं, इसीलिए उस सत्ता को ही सत्य कहते हैं। क्योंकि मुझको पता है शरीर के पालन के लिए मैं करता क्या हूं, कुछ कर्म करता हूं, भोजन व्यय करता हूं और शरीर से व्यवहार करता हूं, केवल इतने मात्र से क्या ये शरीर चल जाए? श्वास लेने में मैं कोई सहयोग नहीं करता, दिल को धड़काने में मैं कोई सहयोग नहीं करता, सारे शरीर का जो संचालन है, यहां तक कि भोजन जो हजम होता है वो भी मैं नहीं करता। तो इस शरीर को शक्ति देने वाला, इस शरीर को जीवन देने वाला और बुद्धि में चेतना देने वाला, क्योंकि तो मुझको पता है कि मैं जानता हूं, इस मैं को ही बुद्धि कहते हैं। इस शरीर में जो जानता है वही तो मैं हूं, लेकिन मैं यह भूला रहता हूं कि मेरी इस बुद्धि में या मुझ में जो चेतना है, ये जानने की क्षमता है, ये आई कहां से? जानने की क्षमता मैटीरियल में तो होती नहीं। सारी सृष्टि, सारा संसार चलता फिरता घूमता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें क्रिया तो है लेकिन चेतना नहीं है, जानता कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता। तो जानता कौन है? बुद्धि जानती है, जिसको जीव कहते हैं या जिसको आप मैं कह सकते हैं। तो मैं का संबंध जो जानने वाला है उसके कारण ही तो ये शरीर है, यदि मैं इसमें से निकल जाए तो शरीर बचेगा कहीं। जब तक मैं इस शरीर के अंदर जानने वाला उपस्थित हूं तभी तक ये शरीर चल रहा है ईश्वर कृपा से, ईश्वर के विधान के अनुसार। और जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ देता हूं या यूं कहें कि मेरे द्वारा ये शरीर छूट जाता है, उस दिन शरीर मिट्टी ही, धरती का मटेरियल ही। तो यदि मैंने किसी सत्पुरुष को गुरु धारण नहीं किया, उसके शास्त्र को, उसके वचन को, उसके ज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं की, तो फिर संसार ही मेरे लिए सब कुछ है और शरीर ही मेरे लिए सब कुछ है। जबकि सत्य यह है, शरीर भी पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। संसार में भी पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये मैटीरियल आपका क्या कर सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी धरती जिस पर ये सब शरीर पल रहा है वो तो ईश्वर चला रहा है, मनुष्य तो संसार को चला ही नहीं। अपने बारे में आप ये कह सकते हो कि मैं चला रहा हूं अपने शरीर, क्योंकि आपके अंदर ये बहन बैठा हुआ है। सत्य यह है कि दिल की धड़कन और श्वास का लेना, ये दोनों क्रियाएं आप नहीं कर रहे हो तो कैसे शरीर चला रहे हो? क्योंकि मेरे सोचने के तरीके सांसारिक हैं, इसलिए कभी मेरा इन बातों पर ध्यान जाता ही नहीं। इसीलिए मेरे जीवन में संसार का महत्व बना रहता है, ईश्वर का महत्व गायब हो जाता है। उसकी तो मैं जरूरत तक नहीं समझता, ईश्वर के बिना तो मेरे सारे काम हो रहे हैं, मुझे जरूरत क्या है ईश्वर उपासना। लेकिन संसार में रहकर जो मेरी दुर्दशा होती है, जो मुझे कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो एक अनिश्चय मेरा जीवन काल है, पूरा पूरा जीवन काल अनिश्चित है, यहां कब क्या होगा मुझे पता ही नहीं। लेकिन यदि ईश्वर विज्ञान के अनुसार देखें तो यहां जन्म से मृत्यु तक का सारा स्पान फिक्स्ड है, इसमें कोई लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि यह ईश्वर के विधान के अंतर्गत और ईश्वर के अधीन ही शरीर कार्य कर रहा है। और इस शरीर का एक प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के सिद्धांत के अनुसार शरीर की सारी क्रियाएं, लोगों से आपका संबंध, मिलना बिछड़ना सब कुछ निश्चित चल रहा है। इसीलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि इतना बड़ा महाभारत जहां लाखों लोग इकट्ठे हैं, अर्जुन समझ रहा है जो चाहो मैं कर सकता हूं, जो ना चाहो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि सबके शरीर प्रारब्ध के अधीन है। यहां ये सारे लोग मरने के लिए ही इकट्ठे हुए, इनका वक्त आ गया। ये इतना बड़ा सत्य अर्जुन की समझ में नहीं आया, इसलिए कृष्ण उसके उस बहन को मिटाने के लिए, उसकी बुद्धि में सत निश्चय देने के लिए वो दृश्य उसको दिखाते हैं अपना मुख खोलकर, तू जो चाहे इसके अंदर देख सकते। तब अर्जुन के अंदर विश्वास आया कि कृष्ण तो ठीक है, ये सारा घटनाक्रम तो घट चुका है, तो मैं अहंकारी बना हुआ हूं कि मेरे करने से हो सकता है, मेरे ना करने से नहीं हो सकता। तब जाकर जब उसकी ज्ञान बुद्धि जागृत हुई, तब उसने कृष्ण के आगे समर्पण किया कि मुझको स्मृति प्राप्त हुई, स्मृति लग गई। अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार, अर्थात उसका पूर्ण समर्पण ईश्वर के आगे हो गया। उसका फायदा क्या मिला? इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जिसमें उसका अपना पुत्र भी मारा गया, हम तो सोचते हैं कि कृष्ण से तो उनकी दोस्ती है, कृष्ण तो उनके साथ है, उसके पुत्र को तो बचा सकते थे, अर्जुन पर इतनी कृपा तो कर ही सकते थे कि उसके पुत्र को बचा ले। यदि अर्जुन को वो बता देते तो क्या अर्जुन अपने पुत्र को मरने देते? लेकिन नहीं, सब कुछ प्रारंभ के अनुसार घटनाक्रम घट रहा है। जिस अर्जुन के इतने नजदीक कृष्ण खुद मौजूद है, लेकिन उसके पुत्र को वो नहीं बचा पा रहे, क्योंकि उसके पुत्र का भी प्रारंभ है, देह का एक वक्त है, इतना गुणवान पुत्र होने के पश्चात भी वो मारा गया। तो यदि मैंने कभी भी सत्य सीखना है अपने बारे में, तो मुझको सत्पुरुषों का संग करना ही पड़ता है, यदि अर्जुन जैसा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भरत बरासी जैसा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, सब कुछ का संग करने को मिल जाए, तो फिर क्या करना पड़ता है? सत्पुरुष के द्वारा जो मार्गदर्शन प्रकट किया गया है शास्त्र के रूप में, ज्ञान के रूप में, उसको मैंने गहराई से पढ़ना सीखना होगा। इसका फायदा क्या मिलता है? हर बात के लिए मैं जो चिंतित रहता हूं, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, या दूसरी बात भी आ सकती है कि मैं जो चाहूं कर सकता, जैसा चाहूं बन सकता, सब कुछ मेरे हाथ में। ये दोनों ही बातें गलत है। इसका पता तभी लगता है जब मैं इन शास्त्रों का, इन सत्पुरुषों की बातों का स्वाध्याय करता हूं। इसीलिए ये वचन क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुने। कहते हैं कि निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति के देने वाला है। सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है। मनुष्य जन्म में सब कर्मों से उत्तम कर्म या सर्वोच्च कर्म प्रभु उपासना है। और मेरी बुद्धि यहां खड़ी हुई है कि दुनिया में सर्वोच्च कर्म कोई है तो रोजी रोटी कमाना है, उसी से मेरी सारी दुनिया चलेगी, ये तो दुनिया मेरी ठप हो जाएगी। तो मेरे लिए सर्वोच्च कर्म अज्ञानता के कारण रोजी रोटी कमाना है, और सत्पुरुषों की दृष्टि में सब सर्वोच्च कर्म प्रभु की उपासना है। क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि निर्मल बुद्धि से उसका सिमरण ध्यान करना ही सब दोषों से निवृत्ति के देने वाला है। ये दोष कौन से हैं? ये पांच दोष जो प्रकृति में हैं, संपूर्ण प्रकृति में ये पांच दोष, पांच तत्व से ये पांच दोष प्रकट हैं, जिसको पृथ्वी जल अग्नि वायु का शरीर है। इन्हीं से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न होते हैं। तो जिस मनुष्य का भी, जिस जीव का भी सांसारिक जीवन है या शारीरिक जीवन है, उसके अंदर ये पांच दोष ही उसको काबू में रखते हैं और उसी से संघर्ष करता हुआ ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। अब जिसका जीवन पांच दोषों से युक्त है और पूरा जीवन युक्त है, तो उसके मन में चैन कैसे आ सकता है? पांच विकार महा दुखदायी जले सकल संसारा, परमारथ और तीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। मैं जीव हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं निर्णय करता हूं, मैं जानता हूं क्या ठीक है क्या गलत, इसलिए मुझसे, इस जीव से गुरु कह रहा है, जीव के लिए शास्त्र प्रकट हुआ, ये ज्ञान मेरे लिए प्रकट हुआ है। यदि मैंने इसको साइंस के तरीके से नहीं सीखा, ये मेरी साइंस है जिसके आधार पर मेरा जीवन सफल होना है, मेरे जीवन में ठंडक आनी है, चैन आना है, शांति आनी है, इसकी मैं जरूरत ही नहीं समझता, केवल पैसा और समाज, बस इन दोनों की, या इसके परिवार का ही, इसकी ही मैं जरूरत समझता हूं, तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि पूरा जन्म मेरा जिम्मेदारी उठाते उठाते मानसिक क्लेश में ही खत्म हो जाता है। चैन का जीवन तो मैं पूरे जीवन भर में एक वर्ष भी व्यतीत नहीं कर पाया। यह मेरे जीवन की असलियत है जिसको मैं हमेशा ही भूला रहा। तो जब सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है, तो ये उपासना होगी कैसे? उपासना तो हम भी करते हैं, हमने से कोई एक घंटा रोज सिगरेट करता होगा, दो घंटे भी रोज करता होगा, कोई आधा घंटे रोज करता होगा, लेकिन मन लगता था हमसे, कंप्लेन तो हमारी एक ही है, बड़ी मुश्किल से तो समय निकालते हैं, फिर भी मन नहीं लगता। तो मन नहीं लगता इसलिए मैं सिमरन छोड़ देता हूं। अरे किसी बच्चे के पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते तो क्या पढ़ाई छोड़ देगा वो? यदि पढ़ाई का महत्व वो स्टूडेंट समझता है, तो वो कला सीखेगा कि कैसे अच्छी तरह से पढ़ाई की जा सकती है, कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो जहां मेरा स्वार्थ कर्म है वहां तो मैं बड़ा होशियार, लेकिन जो परमार्थ कर्म है अज्ञानता के कारण मैं उसकी जरूरत नहीं समझता, संसारी तरीके से जीना ही मैं उचित समझता हूँ, इसलिए धोखा खा जाता हूँ। पूरा जन्म मेरा बेचैनी लेकर परेशान होते होते व्यतीत खत्म हो जाता है। अंत में बुढ़ापा आ जाता है जो है ही दुख का समय, क्योंकि बुढ़ापे में निराशा आती है। जो मेरा शरीर था, जवान था, पुरुषार्थ करके अपने मनचाही में चीज खरीद लाता था, मनचाही चीज उपभोग कर सकता था, और बुढ़ापे में शरीर ही साथ नहीं देता, पैसा भी आपके पास है, वस्तुएं भी आपके पास है, आप खा ही नहीं सकते। शरीर करके भी आप दूसरे के पराधीन हो जाता, स्वतंत्रता आपकी छिन जाती है, तो कितनी अंदर निराशा आती होगी। निराशा क्यों आती है? क्योंकि अभी अपने पास को याद करता है, तो जवानी के दिन थे, बचपन के दिन थे, कैसी उम्र थी, कितनी खुशी थी, ये याद करता है। लेकिन सत्य यह है कि उस समय भी यह परेशानी रहता था, कहता है कभी रिटायर होगा तो चैन से जीऊंगा, पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, संपत्ति होगी, चैन से जी पाऊंगा। लेकिन जब बुढ़ापा आया तब पता लगा कि तो निराशा का वक्त, इसीलिए तेरा कोई दिन अच्छा नहीं है, जीवन का कोई वर्ष अच्छा नहीं है, हर वर्ष तेरे लिए तो होता ही है याद। तो यदि सत्पुरुषों के ज्ञान के आधार पर इसका एनालिसिस करके सीखना शुरू करे तो ये बात तुझको खुद पता लगे कि सत्पुरुष तो ज्ञान के द्वारा, वाणी के द्वारा आपकी सहायता ही कर सकता है, सीखना तो आपने। तो सत्संग का, सत्संगति का यही महत्व होता है कि इन बातों की जरूरत मुझको फील होने लगती है कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, मुझको ईश्वर का रास्ता तय करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सत्पुरुष हुए सब इसी बात को कन्फर्म कर रहे हैं, मैं ही एक अजीब सा इंसान हूं जो इस बात को छोड़े बैठे हूं, दुनियादारों की बात मैं मान लेता हूं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि सब कर्मों से महाकर्म एक प्रभु उपासना ही है, लेकिन होगी कैसे? उपासना करने बैठते हैं तो मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि जो हमने संसार के भोग विलास किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं या जैसे भी कर्म किए हैं भोग विलास के, हमने उनके संस्कार मन में इकट्ठे हो जाते हैं और उन संस्कारों से संकल्प मन में उदय होते हैं। और जिस समय बुद्धि ईश्वर का स्मरण कर रही है, महामंत्र की याद कर रही है, उस समय तो मन आजाद हो गया। तो मन के अंदर वो संकल्प उठते हैं, फिर बुद्धि उन संकल्पों को देखती है, जानती है। वो तो सारे वासना के संकल्प होते हैं, संसार के संकल्प होते हैं, बेचैनी के संकल्प होते हैं, इसीलिए बुद्धि का चैन, बुद्धि की शांति गायब हो जाती है, बुद्धि की एकाग्रता गायब हो जाती है और बुद्धि जो है स्मरण करने में फेल होती है। तो इसीलिए मैं तो स्मरण छोड़ देता हूं, कहता हूं कि फायदा क्या है। लेकिन सत्पुरुष दूसरी बात करें कि तू अपनी बीमारी को समझ, तू समझ, तू ईश्वर की याद करने बैठा है फिर भी फेल क्यों हो रहा है? तूने इस विज्ञान को समझ रहा है। इसका मतलब हुआ कि मन के अंदर जो मैंने संस्कार किए हैं संसार के कर्म करके, संसार के भोग विलास करके, वो मेरा विकारी जीवन था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रेरित जीवन था, उसके संस्कार मेरे मन के अंदर होते हैं जिनसे वो दोषों के संकल्प मन में उदय हो रहे हैं जो बुद्धि को बेचैन कर रहे हैं, उसके अंदर चंचलता उभार रहे हैं। इसीलिए इस मन का मैंने शोधन तो कर रहा है। इसी के लिए ये वचन कह रहा है कि तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते हैं, जिससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु परायणता हासिल करे और तमाम मानसिक दोषों से निवृत्त होकर प्रभु स्वरूप में लीन हो जावे जो अखंड आनंद स्वरूप। बताइए, बुद्धि के एक तरफ मन है और बुद्धि के दूसरी ओर ईश्वर है और दोनों ही बुद्धि के संग है, क्योंकि संसारियों ने मेरे मन को मोटा कर दिया, बुद्धि को कमजोर कर दिया। अब गुरु आया है, वो इस बुद्धि को सतबुद्धि में बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन ईश्वर के कारण चल रहा है, मन के कारण नहीं चल रहा। ये तेरे को बहुत बड़ी गलतफहमी बैठी है कि मन के कारण मेरा जीवन, मन के कारण तेरा जीवन वास्तव में बर्बाद हो रहा है, बुद्धि तेरी बिगड़ रही है। नहीं तो आज ज्ञान जिसको कहते हैं साइंस का, मैनेजमेंट का, और कितने कितने ही कलाएं हैं संसार में पैसा कमाने की, कितना ज्ञान बढ़ रहा है कि आप अंदर से सब जानते हो। जितना ये ज्ञान बढ़ रहा है उतने ही लोग ज्यादा चालाक ज्यादा बेईमान होते चले जाते हैं। चाहे पॉलिटिकल आप करियर देख लीजिए, वहां भी बर्बादी हो रही है। चाहे सामाजिक आप करियर देख लीजिए, वहां भी बर्बादी हो रही है। चाहे व्यक्तिगत पारिवारिक करियर देख लीजिए, वहां भी बर्बादी हो रही है। क्यों बर्बादी हो रही है? क्योंकि मुझको अपना विज्ञान ही नहीं पता, मैं भूल गया कि मानव जन्म बिना ईश्वर के पांच विकार का जीवन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यदि मैंने गुरु ध्यान जीवन में नहीं किया दिल से, उसके ज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं करी दिल से, तो मैं इस पांच विकार के दुष्चक्र में फंस जाता हूं और पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाती है। चैन एक वर्ष भी पूरे जन्म में मुझको देखने को ही नहीं मिलता। और सीखना चाहते हैं तो अपना पास आप इस ज्ञान के आधार पर एनालिसिस करके देखिए, आप ठीक उसी निर्णय पर पहुंचेंगे जिस निर्णय पर सत्पुरुष आपको ले जाना चाहते। तो ईश्वर स्मरण करने के लिए जो मानव जन का सर्वोच्च कर्म है, वो कह रहे हैं वो होगा कैसे, उसमें परेशानी क्या है? तो वो कह रहे हैं कि तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते हैं, जिससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु परायणता हासिल करे। अर्थात जैसे मेरी आज बुद्धि संसार परायण है, भोग परायण है, उससे बुद्धि कन्विंस है कि संसार के भोग मन चाहे मुझको मिल जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, इससे मैं कन्विंस हूं, विश्वास ही मेरे। लेकिन यहां दूसरी बात कर रहे हैं कि ताकि ये बुद्धि ईश्वर परायणता धारण कर ले, अर्थात ईश्वर बुद्धि, इस बुद्धि में ये विश्वास पक्का हो जाए कि यदि मैं ईश्वर मार्ग पर नहीं चला तो पूरा ये मानव जन्म की आयु मेरी निरर्थक बेचैनी मुझको देगी और जीवन बर्बाद करके छोड़ देगी, मैं कहीं का नहीं जाऊँ। तो संसार प्राण जो बुद्धि आती है ये फिर ईश्वर प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। आप बुद्धि में पक्का निश्चय आता है, जिस प्रकार अंदर मन मेरे संग है उसी प्रकार प्रभु भी तो मेरे संग है, वो तो मेरे जिस्म की जान है, मेरी चेतना प्रभु है, क्योंकि जीवन और चेतना ये तो ईश्वर में, इस पांच सूत्र के मेटेरियल में ना जीवन है ना चेतना। तो कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा ज्ञानी है कि अपने बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता, केवल लोगों की नकल करके मैं संसार में जी रहा हूं और बार बार धोखा खाता हूं। इसलिए हम इसे बुद्धिमान वही है कि शास्त्र को पढ़े, शास्त्र पढ़ के इसकी आवश्यकता को समझे, वे ऑफ लाइफ को चेंज करे, ऐसी वे ऑफ लाइफ ऐसा जीवन जीने का तरीका अपनाए ताकि ईश्वर निश्चय मेरी बुद्धि में पक्का हो जाए और बुद्धि निर्णय करे मैंने जीना है तो ईश्वर के लिए जीना। बाकी जब तक संसार को चला रहा है, मेरा शरीर को चला रहा है, तो शरीर करके जो प्रारब्ध है क्या वो बुद्धि चला रहा? तो प्रारब्ध के अनुसार सारी पुस्तकें तेरे सामने आएंगी शरीर करके। इसीलिए निश्चिंत होकर तू आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है बिना किसी भय। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि तुझको सत्कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तमाम सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि के वास्ते हैं, जिससे बुद्धि पवित्र होकर एक प्रभु परायणता हासिल करे। तो अंतःकरण किसे कहते हैं? मन को अंतःकरण। अंतः कहते हैं इंटरनल, करण कहते हैं इक्विपमेंट। मन तेरा इंटरनल इक्विपमेंट, जिसके आधार पर तू निर्णय करता है, जिसके आधार पर तू संसार जीवन व्यतीत करता है। तो इस इंटरनल इक्विपमेंट को, अंतःकरण को शुद्ध करना है, तभी तो बुद्धि सत्स्मरण करने में, ईश्वर की याद करने में सफल हो सकती है। जब तक मन इसका मलिन है तो बुद्धि करेगी क्या? निर्णय भी कर लिया कि मैं ईश्वर का स्मरण करूंगी, करेगी कैसे? इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम लगता है कि पता नहीं कौन कौन सत्कर्म कर रहे हैं। और माँ जी इसके लिए एक वचन लिख रहे हैं सत्तरदास में पेज 52 पर, वो ध्यान से सुन करें। अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है, अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। इस वास्ते सत्कर्मों का धारण करना परम साधन, सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य, सत्स्मरण आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मत का अभाव हो जाता है। दुर्मत का अभाव हो जाता है। मत का मतलब होता है मति, मति का मतलब होता है निश्चय, बुद्धि का निर्णय, बुद्धि का निश्चय। और दुर्मति क्या होती है? बुद्धि का गलत निश्चय। तो मेरा गलत निश्चय क्या है? दो फिर मेरे गलत निश्चय है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, सारे कर्म शरीर से होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप में मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जैसे आपकी बुद्धि का निश्चय है कि मैं देह हूं, तो वैसे ही तो निर्णय बुद्धि का होगा। जब बुद्धि अपने आप को देह करके देख लीजिए, सारे कर्म देह से हो रहे हैं, तो बुद्धि का यह स्वाभाविक निर्णय है कि मैं करता हूं। और दूसरा निर्णय क्या है? मैं देह। बुद्धि यह भी इतना भी नहीं सोचती कि शरीर में तो चेतना नाम की चीज या जिसको कहते हैं जानने वाली वस्तु को है, शरीर में एक ब्रेन है, आंखों को ब्रेन जानता है, ब्रेन नहीं जानता, ब्रेन के द्वारा मैं जानता हूं। शरीर तो केवल एक मशीन है और ब्रेन उसका महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मैं इस मशीन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जानता हूं। जानने वाला शरीर नहीं, जानने वाला मैं, शरीर मेरा एक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पांचों नियम है, सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य और सत्संग आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मत का अभाव होता है। बुद्धि का यह निश्चय बदल जाता है कि मैं देह, और आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि क्या निर्णय करती है कि अरे जानने वाला मैं हूं, लेकिन ये जानने की शक्ति आई कहां से? पूरी सृष्टि में जानने वाला केवल ईश्वर है। कोई कितना भी छुपके पाप कर ले, उसके फल भोगने से वो बच नहीं सकता। कुछ भी क्यों ना कर ले, रावण जैसा बच पाया गया, दुर्योधन जैसा बच पाया गया, कोई नहीं बच सकता। कितनी ही सिद्धियां हो, कितना ही बल हो, कितना ही संसारिक ज्ञान हो, कर्म फल को भोगने से वो बच नहीं सकता कि उसकी कुंजी प्रभु के पास है। वो तो शरीर के जन्म लेते ही प्राप्त रूप में सारे कर्म फल को भोगने के लिए छोड़ देते संसार। अब तेरे हाथ में है ये बात, तू उन कर्म फल को भोगने के लिए ही जीता रहे, या उस ईश्वर को जानने के लिए जी ले जो तेरे कर्म फल को सुरक्षित रहे, जो तेरे प्राण को सुरक्षित करता है, उसके अनुसार तेरे जीवन क्रिया को चलाता है, तेरे परिवार को चलाता है, तेरे समाज, तेरे संसार को चलाता है। सबकी कुंजी प्रभु के हाथ में है, और प्रभु अंतर्यामी है, क्योंकि वाणी करिए वो अंदर भी और बाहर भी सारे संसार को भी देख रहा है, जान रहा है, और मेरे अंदर भी वो मन को, मेरी बुद्धि को जान रहा है, और सब कुछ मेरे लिए जान रहा है। तो ऐसे प्रभु को मैंने छोड़ रखा है, उसकी याद करने की जरूरत ही नहीं। वाणी और केंद्र वचन कह रहा है कि आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप। ये पांच नियम ही सत्कर्म है, सारे सत्कर्म इसके अंदर ही आ जाते हैं। इसलिए संत अभिलाष में से सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्स्मरण ये पांच चैप्टर है छोटे छोटे, उनको ध्यान से पढ़ें, उसके अनुसार अपनी दैनिक क्रिया को बदलने की कोशिश करें, अपनी बुद्धि के निर्णय को बदलें, तब जाकर मेरा मन शुद्ध हो। इस मन के अंदर लोभ की जगह है सेवा आ जाए, लोभ वाले को और चाहिए, सेवा त्याग करता है, वो दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करता है, अपने पास जो माया है उसको खर्च करने की कोशिश करता है, लोभ उसका सेवा में बदल जाता है। तो पांच नियम आपको, ये ईश्वरीय नियम है, जब ये अंतःकरण अर्थात मन तेरा शुद्ध होता है, तब इस मन में जब याद करने बैठता है, तो उनकी स्मरण करने बैठता है, तो मन में प्रभु याद करने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें संस्कार प्रभु वाले बन गए, इसलिए ये बुद्धि उस समय शुद्ध कहलाती है। और ये बुद्धि को शुद्ध अंतःकरण दिया जाता है, जिसको मन कह रहे हैं, इसीलिए सत्वगुणी बुद्धि तैयार हो जाती है, सत्वगुणी मन तैयार हो जाता है, तो सत्ता स्वरूप जो ईश्वर है उसकी प्रेम से जाकर मन सफल होते हैं, तब जाकर हमारा ये मन सफल होता है। क्योंकि उसका जो महान कर्म है, सर्वोच्च कर्म है, कुशल उपासना, वो मैं करने में सफल होता हूँ।